नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मैं हूं राजेश जोशी। नमस्कार, कार्यक्रम का विषय आप जान चुके हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। नंबर एक बार फिर से दोहरा दूं, 1811-7000 और 1811-7001। विषय, बस्तर में पत्रकार कितने आजाद। मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में दो दशक से भी ज्यादा समय से माओवादियों ने अपना गढ़ बना रखा है। बस्तर का ये इलाका घने जंगलों से ढका है और यहां जनजातियां और आदिम जनजातियां सदियों से आबाद हैं। 1967 में उत्तरी बंगाल के नक्सलवादी इलाके में किसानों के विद्रोह से शुरू हुआ आंदोलन 70 के दशक के अंत तक लगभग खत्म हो चुका था। फिर 1980 में आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली सीतारमैया नाम के नक्सली नेता ने इस आंदोलन को पुनरुज्जीवित किया। इस ग्रुप को पीपुल्स वॉर कहा गया। ये ग्रुप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हथियारबंद क्रांति पर विश्वास करने वाला संगठन था, जिससे ही बाद में माओवादी पार्टी विकसित हुई। पिछले 10 वर्षों में बस्तर ही नहीं बल्कि झारखंड, दक्षिणी बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बलों और हथियारबंद नक्सलियों के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। पर इस संघर्ष का केंद्र बस्तर में है और पिछले दिनों एक के बाद एक करके कई पत्रकारों को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुछ कॉलमनिस्ट यानी अखबारों में लेख लिखने वाले लोगों को बस्तर से कथित तौर पर भागने पर मजबूर किया गया है। आज इस कार्यक्रम में हम जानना चाहेंगे कि सुरक्षा बलों और माओवादियों की लड़ाई में क्या प्रेस की आजादी पर वाकई खतरा मंडरा रहा है या नहीं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा, जो एडिटर्स गिल्ड के सदस्य भी थे और अभी छत्तीसगढ़ में एडिटर्स गिल्ड ने अपनी जो टीम भेजी उसमें भी ये शामिल रहे। साथ में हम फोन पर संपर्क करेंगे कॉलमनिस्ट मालिनी सुब्रमण्यम को, जो बस्तर में थीं, जगदलपुर में थीं, लेकिन वहाँ से उनके खिलाफ आंदोलन हुआ, उनको कथित तौर पर धमकियाँ दी गईं और वो बस्तर से निकलने पर मजबूर हुईं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के महानिदेशक डीएम अवस्थी भी हमारे कार्यक्रम में साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं का भी यहां पर इस्तकबाल करूंगा, स्वागत करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आज ये इस पर बात नहीं हो रही है कि माओवादी सही हैं या पुलिस सही है, माओवादी गलत है या पुलिस गलत है। बहस इस बात पर है कि क्या पत्रकारों की आज़ादी बस्तर में, छत्तीसगढ़ में महफूज है या नहीं, और अगर महफूज नहीं रही तो क्या सच सामने आ पाएगा। स्वागत है विनोद वर्मा, आपसे शुरुआत करता हूं। आप कितने दिन घूमे थे बस्तर में, एक संक्षेप में हमें बताइए वहां की क्या स्थिति आपने देखी और क्या अपनी रिपोर्ट में आपने कहा।
धन्यवाद राजेश। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने बहुत अच्छा विषय चुना है इसको, इस पर बात करने के लिए। देखिए, बस्तर में तो हम कुल मिलाकर 1.5 दिन रह पाए, पर बस्तर को मेरे लिए तो जानना कठिन नहीं है। मैं वहीं छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हूं, वहीं पला बढ़ा हूं, पत्रकारिता की है बरसों बरस वहां
जी।
पर 1.5 दिन हमने वहां बिताए और अधिकारियों से बात की, पत्रकारों से बात किया, कुछ और लोगों से मुलाकात की हमने। फिर हम रायपुर में आकर हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उनके मुख्यमंत्री जी ने अपने तमाम अधिकारियों को बुला रखा था, मिस्टर अवस्थी भी उसमें शामिल थे, और फिर वहाँ कुछ वरिष्ठ संपादकों से हमने बात की। इस रिपोर्ट का जो सार है वो एक वाक्य में अगर मैं कह पाऊँ तो ये कि बस्तर में विशेषकर और छत्तीसगढ़ में इन जनरल पत्रकार डरा हुआ है, वो दबाव में काम कर रहा है।
किसके दबाव में काम कर रहा है, क्यों, कौन डरा रहा है?
और ये दबाव दोहरा है, बल्कि तीन इसके एंगल हैं। दो जो हमने अपनी रिपोर्ट में लिखा है वो ये कि एक तरफ तो शासन है, अधिकारी हैं जो नहीं चाहते कि वो लिखा जाए जो वहाँ वस्तु स्थिति है, वो चाहते हैं कि वही लिखा जाए। खासकर पुलिस के अधिकारी ये कहते हैं कि हम आपको जो प्रेस रिलीज भेज रहे हैं वो आप छापिए, आपको बस्तर के अंदर जाके मिलने के लोगों से जानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ माओवादी हैं और माओवादियों का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है कि हम जो आपको बता रहे हैं वो आप कहिए, और हम जो आपको बता रहे हैं अगर उसके अतिरिक्त आप लिखते हैं तो वो सवाल करने लगे हैं कि आपने ये क्यों लिखा और ये क्यों नहीं लिखा। क्योंकि
तो दोनों तरफ, या पुलिस हो या माओवादी हो, वो चाहते हैं कि सच उनके रंग में रंगा हुआ आए, सच जैसा कि पत्रकार दिखाना चाहते हैं वैसा ना आए। क्या ये वस्तु स्थिति है?
एकदम सही है।
और आप एक तीसरी बात भी कर रहे
थे। तीसरा जो है, जो हमने हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे उसमें हमने ये लिखा था कि पत्रकारिता की क्या स्थिति है वो भी हम देखना चाहते थे, पत्रकारों की जो स्थिति है वो तो हम देखना ही चाहते थे, पत्रकारिता की स्थिति भी देखना चाहते थे, और बस्तर में पत्रकारिता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
देखिए मैं आपको रोक रहा हूँ विनोद जी, क्योंकि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से नक्सल विरोधी ऑपरेशन के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ उपलब्ध हैं। अवस्थी साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से बस्तर पुलिस की खास तौर पर और छत्तीसगढ़ पुलिस की लगातार आलोचना हो रही है। मैंने बहुत कम ऐसे लेख पढ़े होंगे जिसमें पुलिस का समर्थन किया गया है या कहा गया है कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। माओवादियों के बरक्स नहीं बल्कि पत्रकारों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, आप उसको कैसे न्यायोचित ठहराएंगे अवस्थी साहब?
देखिए ऐसा है कि न्यायोचित तो ठहराना न्यायालय का काम है, और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी प्रकरण है पिछले दिनों कायम हुए हैं, 2-3 प्रकरण हैं बस्तर में हुए हैं, इतना ज्यादा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। सैकड़ों की तादाद में पत्रकार हैं बस्तर में, और 2 या 3 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की है। मैं ये नहीं कहता कि वो कार्रवाई सही है कि गलत है, लेकिन अब वो मैटर सब जुडिस्ड है, वो लोग जुडिशियल कस्टडी में हैं और जुडिशियल कोर्ट के अधीन है, तो न्यायालय के चूंकि मामला अधीन है इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
2 या 3 नहीं अवस्थी साहब, प्रभात सिंह को गिरफ्तार किया गया, दीपक जायसवाल को गिरफ्तार किया गया, सोमारू नाग, संतोष यादव, ये 4 पत्रकार तो हैं ही, इसके अलावा मालिनी सुब्रमण्यम को वहां से उनके खिलाफ अवस्थी जी उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, पथराव हुआ जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है, और जो वहां पे महिला वकील हैं उनके खिलाफ भी लगातार एक माहौल बन रहा है, इस तरह के आरोप पुलिस पे लगते हैं। अब ये कुछ मामले पुलिस सबजुडिस होंगे, लेकिन पुलिस को अपनी छवि की कोई चिंता है या नहीं है?
ये जो आपने कहा ना, यदि आप मेरी बात सुनेंगे नहीं तो मैं कैसे बोलूंगा?
आपको पूरी बात कहने का आपको मौका इसीलिए बुलाया है, आप कही अपनी बात पूरी।
देखिए जिन बातों की आप बात कर रहे हैं कि लीगल एड ग्रुप्स और जो मालिनी सुब्रमण्यम जी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, वो पुलिस ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है, ये बिल्कुल अलग प्रकरण है। स्थानीय पब्लिक या किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा यदि कोई कार्रवाई की जाती है तो उसको पुलिस के संरक्षण में बताना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें पुलिस ने बाकायदा क्रिमिनल केस दर्ज किया है और उनको पूरा मौका है कि वो गवाही दें, और यदि उनको ये लगता है कि किसी पुलिस अधिकारी कोई शामिल है तो उसके खिलाफ गवाही दें, यही भारतीय न्याय व्यवस्था है।
विनोद वर्मा कुछ कहना चाहते हैं अवस्थी जी?
जी
अवस्थी साहब, ये जो मालिनी अवस्थी और लीगल एड के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो सामाजिक एकता मंच के नाम की एक संस्था के द्वारा की गई है, और उनके खिलाफ FIR भी है, मालिनी अवस्थी ने कराई है। और सामाजिक एकता मंच के बारे में रायपुर से लेकर जगदलपुर तक हर व्यक्ति कहने को तैयार है कि वो पुलिस समर्थित एक आंदोलन है, और वहाँ जो कलेक्टर है वो भी कहते हैं कि वो नागरिकों का एक संगठन है, और हमने वहाँ सुना कि ये तो सलवा जुड़ूम का री इनकारनेशन है, पुनर्जन्म है, इसका शहरी संस्करण है, तो इसको आप असामाजिक तत्व मानते हैं, तो उनको ये संदेश क्यों जा रहा है कि वो पुलिस के संरक्षण में चल रहा है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है?
देखिए ऐसा है कि मैंने फिर कहा और फिर कह रहा हूँ कि केवल पुलिस FIR लिखा देने से, यदि पुलिस आपकी FIR नहीं लिखती है, यदि आपकी गवाही नहीं लेती है, तो आपके पास कोर्ट का पूरा रास्ता खुला हुआ है। कोई भी कानूनविद और जिनकी बातें कर रहे हैं वो तो खुद बड़े बड़े वकील हैं।
नहीं, कुछ लोगों को FIR करने के एकदम बाद गिरफ्तार। जी, कहिए।
मैंने उनसे कहा था जिनकी बात आप कर रहे हैं लीगल एड ग्रुप वालों की, पहली बात तो मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस सब अच्छा ही कर रही है या पुलिस, लेकिन मैं इस बात का
आप बड़ी ईमानदारी से अपनी बात कह रहे हैं अवस्थी साहब, ये बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूँ।
जिस तरह के जंगल में लगातार गोलियों का सामना करते हुए और 1100 के ऊपर जवानों ने अपनी जान दे दी है, शहादत दी है,
वो एक अलग बात है, वो बिल्कुल अलग बात है, वो सुरक्षा बलों की लड़ाई माओवादियों से जो है, और माओवादी अच्छे हैं या बुरे हैं मैंने शुरुआत में ही कह दिया था, लेकिन क्या इस क्रॉस फायर में पत्रकारों को शिकार होना चाहिए, सवाल आज का ये है। आप एक मिनट अवस्थी साहब, एक मिनट रुकिएगा, माफ कीजिएगा, ये हमारे पास आधे घंटे का कार्यक्रम, आप रहिएगा, अभी आपको कहने का मौका और मिलेगा, लेकिन हमारे संवाददाता आलोक पुतुल जो छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट करते हैं BBC के लिए, वो हमारे साथ 1 मिनट के लिए जुड़े हैं। आलोक पुतुल, आप भी बस्तर गए थे, संक्षेप में बताइए एक रिपोर्टर के लिए, आजाद ख्याल रिपोर्टर के लिए जो न पुलिस का पक्ष लेता है न माओवादियों का पक्ष लेता है, उसके लिए काम करना, वहां आपके निजी अनुभव क्या रहे हैं, संक्षेप में 1 मिनट में बताइए।
सबसे खतरनाक ये होता है कि जब आपको कोई पुलिस का अधिकारी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राष्ट्रवादी या राष्ट्रद्रोही के कटघरे में लाकर खड़ा कर दे, तो ये जो स्थिति है, माओवादियों से भी बस्तर के इलाके में पत्रकारों को दोचार होना पड़ता है और उसके बाद चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि और प्रशासन के लोग भी अगर पत्रकारों को इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे, निशाना बनाएंगे, तो स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक पुतुल, ये खुद उस दौर से गुजरे थे, उन्होंने रिपोर्ट भी की थी। अवस्थी साहब, मैं इस सवाल पर आपके पास आऊंगा। दो श्रोता हमारे पास जुड़ चुके हैं, हो सकता है आपके लिए उनके पास कोई सवाल हो। अपना नाम बताइएगा, हमारे श्रोता गण क्या कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए, गाँव का या शहर का नाम बताइए।
जी मैं दरभंगा से एजाज बोल रहा हूँ।
एजाज साहब दरभंगा से,
जी जी सर
बताइए।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के जो मीडिया के जो लोग हैं उस पर जो जिस तरह का जो सिचुएशन है कि अभी प्रेशर में रहकर काम करना पड़ता है, इससे मेरा पूरा जो समाज का माहौल है वो भी कर रहा है। साथ ही कई बार ये भी देखने को मिलता है कि मीडिया भी हम कई वजह से उनसे बिक जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम हमारी कमजोरी को लोगों ने देख लिया है या जो व्यवस्था है वो देख चुकी है जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं और होना है।
एजाज साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कही। आप ये एक मिनट टेलीफोन लाइन पर आप रहिए। विनोद अपना सिर हिला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि सहमति में शायद ये बात कह रहे हैं। इनका ये कहना है कि पत्रकारों ने खुद को कंप्रोमाइज तो नहीं कर लिया है।
इनका आरोप गलत नहीं है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पत्रकारों की एक बड़ी संख्या है जो बस्तर में भी है, जो सरकार के दिए हुए विज्ञापनों से, उनके द्वारा दिए गए ठेकों से, उनके दिए हुए दूसरे तरह के प्रलोभनों से प्रभावित हैं, उनके पैसों से उनकी आजीविका चलती है और वो साथ में पत्रकारिता करते हैं। ये पत्रकारिता की भी चुनौती है। मैं इस सवाल से इनकार नहीं करूंगा कि
जी
ये सही है।
एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दरभंगा से बोल रहे हैं। दूसरे भी श्रोता हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका?
रामचंद भाई पटेल।
जी क्या नाम बताया?
रामचंद भाई पटेल।
जी पटेल साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
गुजरात पालमपुर।
पालमपुर से हिमाचल प्रदेश?
गुजरात गुजरात।
अच्छा गुजरात से बोल रहे हैं। जी कहिए कहिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अपनी बात संक्षेप में रखिए, पत्रकार अगर आजाद नहीं रहेगा, उसको उस पर अगर दबाव में काम करेगा तो सच के आपके सामने आ पाएगा, ये सवाल आज के हमारी बहस का है।
बिल्कुल सच सामने नहीं आएगा सर, जो अगर वो पत्रकार दबाव में काम करेगा वो सच बिल्कुल सामने नहीं आएगा। और पुलिस वाले तो वो है ना, वो तो समाज में उसका काम ही नहीं है। वो लोग तो सामान्य आदमी को भी परेशान करते हैं, उनकी जो पार्टी ऐसी है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपने अपनी बात कह ली, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवस्थी जी। जो हमारे जिन श्रोताओं ने रेडियो थोड़ा देर से खोला है उनको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी जी हमारे साथ हैं और मालिनी सुब्रमण्यम जो कॉलमनिस्ट जगदलपुर में थी, बस्तर में थी, लेकिन उनको मजबूरी इसमें वहाँ से हटना पड़ा, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ी हुई है। मालिनी आप इस वक्त बस्तर में तो नहीं रह रही हैं, क्यों आपको जाना पड़ा? आप अवस्थी जी हमारे साथ हैं, आप बताइए कि क्या दबाव था आपके ऊपर और अगर था तो?
नहीं बिल्कुल, मतलब अपने घर को मजबूरन ही छोड़ के मुझे जाना पड़ा जगदलपुर से, और मैं पिछले 5 साल से जगदलपुर में हूँ और पिछले कई सालों से मध्य भारत में काम कर रही थी। लेकिन मेरे लेख को लेकर के आपत्ति जताते हुए मुझ पर दबाव बनाया गया और मुझे वहां से निकलने में मजबूर किया गया।
देखिए मालिनी जी, एक सवाल आपसे मैं बहुत सीधे करना चाहता हूं कि इतने पत्रकार वहां पर हैं जो लिख रहे हैं, किसी को ये अभी अवस्थी जी ने कहा कि कई 100 पत्रकार वहां पर हैं, सबको तो हम नहीं कुछ कहते हैं, आपने ऐसा क्या लिख दिया था जिससे कि कुछ लोग आपके खिलाफ हो गए, आपको माओवादी समर्थक बताने लगे? क्या आपने ऐसा कुछ लिखा था
जी,
जिससे माओवाद मजबूत हो, क्योंकि वो एक हथियारबंद वहां पर संघर्ष सुरक्षा बलों से चला रहे हैं, अगर आपके किसी लेख से उनको मजबूती मिलती है तो फिर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऐसा पुलिस का मानना है?
ये उनका मानना है, मेरा काम लिखने का है और मैंने जो लिखा है वो लोगों के दृष्टिकोण से लिखा है। जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके साथ जो बीती है मैंने उन चीजों को लिखा है। मैंने कहीं पर भी किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं लिखा है कि एक इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी खबर को रखा है। हमारे लेख देख सकते हैं लोग और उसको पढ़ भी सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो हुआ है उसको लिखा है। आप इससे पुलिस को लगे कि हम उसके विपक्ष लिख रहे हैं या माओवादियों को लगे हम उनके विपक्ष में लगे, तो ये तो उनके देखने का नजरिया है।
नहीं, लेकिन खतरा आपको है? आपको जो धमकी है वो माओवादियों की तरफ से तो नहीं मिली या मिली थी?
देखिए जो नहीं, मुझे धमकी माओवादियों से नहीं मिली थी। मुझे तो दबाव बनाया गया है कुछ लोगों की तरफ से और जिसके साथ मुझे लग रहा है पुलिस भी शामिल थी।
अवस्थी जी, यहाँ मैं आपको लाता हूँ। मालिनी एक मिनट रुकिएगा यहाँ पर। अवस्थी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मालिनी सुब्रमण्यम को, इस डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक देश में जहाँ इमरजेंसी नहीं लगी हुई है, जहाँ कोई सेंसरशिप नहीं है, एक पत्रकार कह रहा है कि उसको सिर्फ अपने लेखन की वजह से एक जगह से छोड़ के जाना पड़ा है, क्या कहेंगे अवस्थी साहब?
मैं तो ये मालिनी जी को कह रहा हूँ कि वो आए वापस जगदलपुर में और उन्हें हम चाहेंगे तो पुलिस की सुरक्षा भी प्रदान कराएंगे। वो अपनी इच्छा से चली गई है शायद, जो भी कारण रहे हो, और मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि जो भी भारत का नागरिक है वो वहाँ रहने के लिए स्वतंत्र है, और जिसकी संविधान में आस्था है भारत के, वो न केवल चाहे पत्रकार हो चाहे कोई आम नागरिक हो, सबको ये आज़ादी है कि वो अपना काम करे, और पुलिस को ये आज़ादी कतई नहीं है कि संविधान के विरुद्ध काम करे। पुलिस के खिलाफ, पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बहुत सी संस्थाएं हैं, हम लोग हैं जो हमारे नीचे के अधिकारियों पर नियंत्रण करते हैं, कोर्ट्स हैं।
लगता है अवस्थी जी की लाइन, टेलीफोन लाइन कट गई है। मालिनी, उन्होंने कहा है कि वो आप वापस आएं, वापस जगदलपुर आएं, वापस बस्तर में आएं, और आपके आपके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, उन्होंने तो खुद आपको बुलाया है, आप किस दहशत में हैं?
नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है, सुन के मुझे अच्छा लगा। मैं मेरे जाने के बाद और पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है
जी।
मैं जगदलपुर को मैंने अपना घर बनाया है, वहाँ पे मेरा एक जमीन का टुकड़ा भी है, वहाँ से मैं जाने के लिए नहीं आई थी, मेरे बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे स्कूल में, और उनको परीक्षा के समय मुझे इस तरीके से निकलना हुआ, तो मैं लौटना ही चाह रही थी, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना, जिस तरीके के अटैक्स हुए कुछ एक्टिविस्ट के ऊपर, जो वहाँ पर लीगल एड के लॉयर्स थे उनको वहाँ से निकाला गया
जी,
उन पे दबाव बनाया निकला, और उसके बाद में पत्रकारों को जिस तरीके से केसेस पे केसेस लग के उनको गिरफ्तार किया गया, वो कहीं पर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था।
लेकिन सलवा जुलूम, मालिनी सलवा जुलूम तो खत्म हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी करार दिया था, अब तो वहां इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। सलवा जुलूम नाम से कम कुछ नहीं चलता है। विनोद, मैं आपके पास आऊंगा अभी थोड़ी देर में। मालिनी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा।
बिल्कुल सही है। मैं देखिए, कुछ भी हो वहां पर, पत्रकार को वहां पर जो हो रहा है उसको लिखने की आजादी होनी चाहिए।
अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवस्थी जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, जो नक्सल विरोधी ऑपरेशन के महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक हैं। अवस्थी जी, अपनी बात संक्षेप में कहिए।
मैं आपको बिल्कुल एक सेकंड में ये बता रहा हूँ कि अभी 4-5 दिन पहले बहुत बढ़िया संपादकीय श्री रुचिर गर्ग जी ने नवभारत में फ्रंट पेज पर लिखा, और लिखा कि पुलिस के का राज है और पुलिस बहुत पत्रकारों पर अत्याचार कर रही है, और वो उन्होंने जो लेख लिखा उसको किसी ने भी उसकी ना तो भर्त्सना की हमने, ना निंदा की, ना रुचि
नहीं, वो तो पुलिस का काम ही नहीं है भर्त्सना निंदा करने का, काम तो राजनीति क्यों का है?
हमने कोई प्रकरण, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रकरण दर्ज नहीं कर लिया रुचिर जी पर, ना उन्हें गिरफ्तार किया ना करेंगे,
लेकिन
उनकी स्वतंत्र पत्रकारिता है। सुनिए तो
जी,
मेरा ये कहना है कि आप अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र व्यक्ति हैं और लिखेंगे तो आपका स्वागत है, और जो दो घटनाएं 4 पत्रकारों की बात हो रही है, वो प्रकरण के बारे में मैंने कहा कि मेरा टिप्पणी करना इसलिए ठीक नहीं है कि मैटर कोर्ट में है, यदि कोर्ट में ना होता तो मैं जरूर उस पर कोई।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अवस्थी जी, लेकिन हमारे
सरकार ने एक कमेटी बनाई हुई है कि इसकी घटना इस प्रकार की ना हो, गिरफ्तारी होने के पहले एडिटर्स की भी एक टीम बन गई है।
हम इसको बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हमारे खुद के पत्रकार आलोक पुतुल को बस्तर से लौटना पड़ा था, वो पूरी रिपोर्ट आपके सामने है।
आए थे उसके बाद जी, आलोक पुतुल जी मुझसे खुद मिले और उन्होंने मुझे,
लेकिन आपसे तो मिल सकते हैं अवस्थी जी, लेकिन आपके महकमे में कुछ ऐसे आला अधिकारी हैं जिनसे नहीं मिला जा सकता है, जिनसे
अवस्थी जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा। यह है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की टीम जो है जगदलपुर जाती है, और वहाँ आईजी साहब जो है लगातार संपर्क करने के बाद हमसे नहीं मिलते हैं। आपने रुचिर पर कोई मुकदमा कायम नहीं किया, बहुत धन्यवाद।
लेकिन
आपने मालिनी पर भी कोई मुकदमा कायम नहीं किया, पर यह है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर जो है जगदलपुर कलेक्टर तक सबके मन में ये धारणा है कि वो प्रो माओविस्ट हैं,
मैंने जगदलपुर कलेक्टर से पूछा।
एक मिनट क्षमा कीजिएगा अवस्थी जी, इस ये हम एक क्लिप चला रहे हैं आपके जो पुलिस महानिदेशक हैं उनकी, कल्लूरी साहब की, उसको सुनिएगा उन्होंने बीबीसी से क्या कहा।
कल्लूरी साहब,
जब जर्नलिस्ट इज अ पर्सन हु अटेंड्स आवर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, whom we know, whom we see every day. Every Tom, Dick and Harry calls on a telephone and he wants a prolonged interview like this. You think we are maintaining some center, communication center? Please put down the phone. If Alok Prakash Putul has some issue, ask him to call me.
ये थे कल्लूरी साहब, अवस्थी जी जानते हैं उनको, सब लोग हम लोग जानते हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं। जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसको बिल्कुल नहीं जानना चाहते हैं। आज हमारा विषय बीबीसी नहीं है, पत्रकारिता है। इसलिए अवस्थी जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पूरी बात हमारी सुनी। इस पर कुछ कहना चाहते हैं?
मैं कुछ
मालिनी कुछ कहना चाह रही हूं।
इतना ही कहना चाहती हूं कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया गया पूरे जगदलपुर टाउन में, एक मतलब इसके बावजूद के कल्लूरी जी और एसपी दास जी हमारे घर आए और ये आश्वासन देने के लिए वहाँ पे फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, इसके बावजूद भी पूरे शहर में एक इस तरीके का माहौल बनाया गया कि हम माओवादी हैं, माओवादी के समर्थक हैं, इनको भगाया जाए, इस तरीके का माहौल बनाया जाए, और फिर हमारे मकान मालिक से ये दबाव बनाया जाए कि उनको तुरंत उनको खाली करवाए, हम जाएंगे कहाँ।
जी मालिनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दो श्रोता जुड़े हुए हैं, अवस्थी जी मैं आपके पास फिर से आऊंगा। श्रोता क्या कहना चाह रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं आप, नाम बताइएगा।
से बोल रहा हूं, मेरा नाम असदुल्ला है, शिवहर जिला से बोल रहा हूं। ठीक है
असदुल्ला साहब, कहां से बोल रहे हैं?
शिवहर जिला के बिहार से।
जी बताइएगा, बिहार से बोल रहे हैं आप।
जी मेरा कहना यह है कि कल्लूरी साहब के सुनी, उन्होंने बिल्कुल अपशब्द का इस्तेमाल किया था और ये एक बड़े ऑफिसर के लिए अच्छा नहीं लगता, और पत्रकारिता पर जो हमला हो रहा है वो मुझे बहुत ही खराब लगा, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश हो रही है जिसकी वजह से लोग सच्ची खबर को नहीं देख पा रहे हैं।
जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, माफ कीजिएगा हमारे पास समय कम है, आपने अपनी बात कह दी है। और ये फोन टैपिंग की भी एक बहुत सारी एक इल्ज़ाम लगते हैं पुलिस पे कि हर पत्रकार का फ़ोन टैप किया जाता है। इससे पहले कि हम इस पर मुद्दे पर आए, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इस पूरी विवाद में जो माओवादी हैं उन्होंने भी अपना पक्ष हम तक भेजा है। उनके प्रवक्ता की बात हम आपको सुनाने जा रहे हैं।
मैं विकल्प भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का प्रवक्ता इंडिया बुल की टीम को नमस्कार के साथ आज के विषय पर दो चार बातें बोलना चाहता हूँ। आज की तारीख में बस्तर में भयानक दमन जारी है। तमाम विस्थापन विरोधी आंदोलनों के कार्यकर्ता, जनता, जनपक्षधर या कहे निष्पक्ष पत्रकार, प्रगतिशील जनवादी ताकतें पुलिस के निशाने पर हैं। यहाँ पुलिस राज चल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग को सारे अधिकार दिए हैं। पुलिस किसी को भी कभी भी कहीं से भी गिरफ्तार कर सकती है।
ये माओवादी पार्टी का पक्ष था और जाहिर सी बात है जो उन्होंने कहा उनसे वही उम्मीद की जा सकती है, पुलिस पर इल्जाम लगाएंगे। अवस्थी जी आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं संक्षेप में?
नहीं, मैं सिर्फ यही बार बार कहना चाहता हूँ कि पत्रकार किसी भी, पुलिस भी उसी तरह से समाज का अंग है जैसे पत्रकार हैं, और पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वह अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करें, और जो भी पुलिस अधिकारी कोई भी दुर्व्यवहार या कोई गलत कार्रवाई करता है उस पर कार्रवाई की जा सकती है और की जाएगी। जहाँ तक इन मालिनी जी का सवाल है और जो जगदलपुर लीगल एड ग्रुप के लोग तो मेरे पास आए भी थे, मैंने उन्हें खुद
अवस्थी जी देखिए कुछ चिंता की बात है। जो हम जिस बैठक में आपके साथ थे उसमें गृह सचिव ने कहा कि हम फोन टैपिंग का मैं किसी को अनुमति नहीं देता हूं, उसी के एक दिन पहले जगदलपुर के कलेक्टर कहते हैं कि फला फला पत्रकार सर्विलेंस में थे हमारे पास। तो ये जो विरोधाभास है ना ये बहुत ज़्यादा है। आप जो रायपुर में बैठकर कहते हैं और जो जगदलपुर में आपके अधिकारी कहते हैं उसमें बहुत फासला है। इस फासले को ये जो वो जो उस दिन आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा था कि परसेप्शन गैप बहुत ज़्यादा है, वो परसेप्शन गैप दरअसल जो है ना पत्रकारों को चिंतित कर रहा है, क्योंकि आपके करनी और कथनी में फ़र्क दिखता है।
हमारे एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, संक्षेप में अपनी बात कहिए, हमारे पास बिल्कुल समय कम है। क्या नाम है आपका?
हेलो, मैं नंदकिशोर सिंह बोल रहा हूँ।
कहाँ से?
मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार से।
नंद किशोर जी, जब आपके पास सच पत्रकार लाते हैं और उन्हीं पत्रकारों पर दबाव अगर पड़ेगा तो क्या आप उस सच पे भरोसा कर पाएंगे?
जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया वाले को जो है ना, कुछ मीडिया वाले को सर्टिफिकेट जांच किया जाए कि उस लाइक है या नहीं।
जी पूरी बात कही आपने, बिल्कुल आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि मीडिया वाले भी इस लायक हैं कि वो रिपोर्ट कर सके या नहीं, ये बड़ा जरूरी सवाल है।
जी जी, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो मीडिया लायक है या नहीं है, बस यही कहना चाहूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवस्थी जी, आपने उम्मीद है कि आप संतुष्ट होंगे, अपनी पूरी बात आपने कही और हम कोशिश करेंगे कि आगे के कार्यक्रमों में भी आपसे हम संपर्क करें। मालिनी सुब्रमण्यम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे मालिनी अपनी एक संक्षेप में कोई बात कहना चाहते हो कहिए मालिनी।
हाँ, मैं इतना ही कहती हूँ, देखिए कॉन्फ्लिक्ट एरिया में रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल वाला काम है, ठीक है
जी।
और
हमारे पास सिर्फ 15 सेकंड है
जी, जितना हम खुल के न्यूज को बाहर आने देंगे, फैक्चुअल न्यूज को आने देंगे, उतना ही हमारी रणनीति अच्छी बनेगी।
जी,
जितने भी रिपोर्ट है उसमें विश्वास हम कैसे बढ़ाएंगे लोगों के बीच में, इस संदर्भ में ही रहा है।
मालिनी सुब्रमण्यम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अवस्थी जी हमारे तमाम श्रोता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं राजेश जोशी आप सभी से अनुमति लेता हूं और अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।